भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। ये भागवत का दशम स्कंध है। भागवत का दशम स्कंध है ये, और भाग एक है, अध्याय एक है, श्लोक संख्या 8 से हम पढ़ रहे हैं। अध्याय का शीर्षक है भगवान श्री कृष्ण का अवतार परिचय। ओम अज्ञान तीव्र अंधस्य ज्ञानांजना शलाकया चक्षुर उन्मीलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम येन भूतले स्वयं रूपगदा मह्यम ददाति स्वपदांधिकम वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। आप सब बोले हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये भागवत का दशम स्कंध है जिसमें भगवान कृष्ण की लीलाएं हैं, अद्भुत लीलाएं हैं, भगवान कृष्ण की मनोरम लीलाएं हैं। और इस अध्याय के प्रारंभ में परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी से कहा था, कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्ययो। क्या मतलब इसका? राजा परीक्षित ने कहा है, हे प्रभु, आपने चंद्रदेव तथा सूर्यदेव दोनों के वंशों का, उनके राजाओं के महान तथा अद्भुत चरित्रों सहित विशद वर्णन किया है। अब परीक्षित महाराज आशा कर रहे हैं सुखदेव गोस्वामी से कि वो विस्तार से वर्णन करें। भगवान कृष्ण के बारे में परीक्षित महाराज विस्तार से सुनना चाहते हैं। इससे पहले सुखदेव गोस्वामी ने भागवत में अलग अलग अवतारों का वर्णन किया, कुछ अध्यायों में और कुछ श्लोकों में, लेकिन जब भगवान कृष्ण के बारे में बोलना शुरू किया है सुखदेव गोस्वामी ने, तो परीक्षित महाराज उनसे प्रार्थना कर रहे हैं कि इसको आप संक्षिप्त में ना बताएं, इसको आप विस्तार से बताएं, भगवान कृष्ण के बारे में विस्तार से बताएं, क्योंकि भगवान कृष्ण के बारे में ही तो वो जानना चाह रहे थे बचपन से। माता के घर में परीक्षित महाराज ने भगवान कृष्ण का दर्शन किया था और उन्हीं भगवान कृष्ण के बारे में उनको सुनने का मौका मिला है। और अभी वो गंगा जी के तट पर बैठे हैं और चौथा दिन हो गया। उन्होंने चार दिन से, चार रात से पानी भी नहीं पिया, ना कुछ खाया। गंगा का जल बिल्कुल नजदीक था, शुद्ध ताजा जल, कोई प्रदूषण नहीं था उसमें, ना वहां पर एक्वाफेना की जरूरत थी, ना बिस्लेरी की आवश्यकता थी। वहां पर तो गंगा जल था, जितना चाहिए पी लो, शुद्ध ताजा पवित्र जल। परीक्षित महाराज लेकिन पानी नहीं पिए, क्योंकि कृष्ण कथा में, भागवत कथा में उनको बड़ा आनंद आ रहा था। भूल गए, वास्तव में पीना भूल गए, खाना भूल गए, शरीर की कोई सुध-बुध ही नहीं रही, देहात्मक बुद्धि से ऊपर उठ गए, केवल सुखदेव गोस्वामी से सुनने मात्र से, उनसे सुनने मात्र से ही वो आध्यात्मिक धरातल पर पहुंच गए थे। परीक्षित महाराज ने कहा, मृत्यु द्वार पर होते हुए अपने व्रत के कारण मैंने जल ग्रहण करना भी छोड़ दिया है, फिर भी आपके कमल मुख से निकले कृष्ण कथा रूपी अमृत का पान करने से मेरी भूख तथा प्यास जो सहन नहीं की जा सकती है, मुझे किसी तरह भी बाधा नहीं पहुंचा रही। तो भूख प्यास को सहन करना बहुत मुश्किल है, खासकर एकादशी के दिन। लेकिन परीक्षित महाराज ने तो चार दिन से जल भी नहीं पिया। हमारे कई भक्त साल में एक बार में जल रखते हैं, परीक्षित महाराज ने लगातार चार दिन चार रात के लिए जल नहीं पिया। वो परीक्षित महाराज जो पूरे विश्व के सम्राट थे, भारतवर्ष के परीक्षित महाराज ने लेकिन एक बूंद पानी नहीं पिया। जानते हैं इसका रहस्य क्या है? उनका प्रगाढ़ प्रेम था कृष्ण से। कृष्ण से प्रेम होने के कारण भूख प्यास नहीं लगी उनको। बनावटी रूप से उन्होंने जल नहीं त्यागा, बनावटी रूप से उन्होंने खाना नहीं छोड़ा। कृष्ण से प्रेम इतना अधिक हो गया कि शरीर की चिंता ही समाप्त हो गई। ये वास्तव में परफेक्शन है, ये सिद्धि है मनुष्य जीवन की। तो परीक्षित महाराज पूछ रहे हैं सुखदेव गोस्वामी से, कह रहे हैं कि आप विस्तार से वर्णन करें भगवान कृष्ण की लीलाएं जो हैं, वो भगवान कृष्ण की लीलाएं विस्तार से सुनाएं। और परीक्षित महाराज ने जो प्रश्न किए उसी प्रश्न का उत्तर दिया सुखदेव गोस्वामी ने श्रीमद् भागवत के दशम स्कंध में। परीक्षित महाराज जो भी प्रश्न किया उसी का ही उत्तर दिया है सुखदेव गोस्वामी ने दशम स्कंध में भागवत। वो जानना चाहते हैं क्या क्या प्रश्न थे, सुनिए। हे सुखदेव गोस्वामी, आप पहले ही बता चुके हैं कि द्वितीय चतुर्व्यूह से संबंधित संकर्षण रोहिणी के पुत्र बलराम के रूप में प्रकट हुए। यदि बलराम को एक शरीर से दूसरे शरीर में स्थानांतरित ना किया गया होता तो यह कैसे संभव हो पाता कि वह पहले देवकी के घर में रहते और बाद में रोहिणी के घर में? कृपया मुझे इसकी व्याख्या कीजिए। बलराम जी के बारे में पूछ रहे हैं सबसे पहले। फिर क्या पूछ रहे हैं? भगवान कृष्ण ने अपने पिता वसुदेव का घर क्यों छोड़ा और अपने को वृंदावन में नंद के घर क्यों स्थानांतरित किया? यदुवंश के स्वामी अपने संबंधियों के साथ वृंदावन में कहां रहे? आज से जन्माष्टमी का उत्सव शुरू हो गया है। आप सुन रहे, जन्माष्टमी आज से शुरू हो गई है। आप सोचेंगे अरे इस साल में जल्दी कैसे शुरू हो गई? जब भी आप कृष्ण के बारे में सुनेंगे वो दिन जन्माष्टमी का दिन है। कृष्ण कथा आप रोज सुनिए आपके घर में, रोज जन्माष्टमी है ना। और जिस दिन कृष्ण कथा नहीं है उस दिन हमारा तिरुभाव। तो यहां पर ये कह रहे हैं कि क्या हुआ भगवान कृष्ण का, यदुवंश के स्वामी अपने संबंधियों के साथ वृंदावन में कहां रहे? भगवान कृष्ण वृंदावन तथा मथुरा दोनों जगह रहे तो वहां उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपनी माता के भाई कंस को क्यों मारा जबकि शास्त्र ऐसे वध की रज मात्र भी अनुमति नहीं देता? तो ऐसा लगता है परीक्षित महाराज ने थोड़ा बहुत तो सुना है कृष्ण के बारे में, नहीं तो ये क्यों कहेंगे कि माता के भाई कंस को क्यों मारा जबकि शास्त्र ऐसे वध की रज मात्र भी अनुमति नहीं देता। भगवान कृष्ण का शरीर भौतिक नहीं है फिर भी वह मानव के रूप में प्रकट होते हैं। वह ऋषि के वंशजों के साथ कितने वर्षों तक रहे, उनकी कितनी पत्नियां थी, वह द्वारका में कितने वर्षों तक रहे? हे महामुनि, आप कृष्ण के विषय में सब कुछ जानते हैं, अतएव उन सारे कार्यकलापों का वर्णन विस्तार से करें जिनके बारे में मैंने पूछा है तथा उनके बारे में भी जिनके विषय में मैंने नहीं पूछा है। परीक्षित महाराज की लालसा देखिए आप कृष्ण कथा सुनेंगे, जबकि उन्होंने पानी नहीं पिया, कुछ खाया नहीं, वो कह रहे हैं कि कृपा करके आप उसके बारे में भी बताएं जो मैंने नहीं पूछा है। हो सकता है कुछ ना मैंने कहा हो, पूछा हो, और आप जानते हो तो उसको छुपाना नहीं अपने तक, उसे भी आप सुनाइएगा। मेरे पास बहुत समय है, कम से कम 3 दिन और तो है मेरे पास। तथा उनके बारे में भी जिनके विषय में मैंने नहीं पूछा, क्योंकि उन पर मेरा पूर्ण विश्वास है और मैं उन सब को सुनने के लिए अत्यंत उत्सुक हूं। परीक्षित महाराज स्वयं बोल रहे हैं कि मैं अत्यंत उत्सुक हूं कृष्ण कथा सुनने के लिए। हम लोग उत्सुक हैं कृष्ण कथा सुनने के लिए? हम लोग उत्सुक नहीं है। हम लोग उत्सुक हैं सांसारिक चर्चा सुनने के लिए, लेकिन आप लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं कि कम से कम आप मंदिर आते हैं हफ्ते में एक बार सुनने के लिए नहीं। लेकिन दुर्भाग्यशाली है वो लोग जो कृष्ण कथा सुनना ही नहीं चाहते हैं। इसलिए भागवत बताया गया, भागवत में बताया गया वो स्थान जहां पर कृष्ण कथा नहीं होती है वो कौओं का तीर्थ स्थान है। तद्वाय समतीर्थम उशंति मानसा। तो कृष्ण कथा को औषधि बताया गया है। भागवत में क्या बताया गया है? निवृत्त तर्शेर उपगीय मानान भवोषदा श्रोत्र मनोभिरामा का उत्तम श्लोक गुणानुवादात पुमान विरजेत बिना पशुनाथ। सबके लिए है भागवत कथा, सबके लिए कृष्ण कथा है। जो आनंद लेना चाहते हैं, मनोरंजन के लिए सुनना चाहते हैं, उनके लिए भी कृष्ण कथा है मनोविरामत। और जो निवृत्त दर्शन यानी कि तृष्णा से जो निवृत्त हो चुके हैं, भौतिक इच्छाओं से जो मुक्त हो चुके हैं, उनके लिए तो है ही कृष्ण कथा, उनके लिए तो क्या है अमृत है, वो तो आनंद लेंगे इसका। जैसे परीक्षित महाराज निवृत्त दर्शन है, बिल्कुल भौतिक इच्छा नहीं है, इसलिए कृष्ण कथा अमृत का पान कर रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। बहुषदाच, बहुषदि का मतलब है भव रोगी, पीड़ित बीमार लोग जो इस संसार में फंसे हुए हैं, निकलना चाहते हैं, उनके लिए भी कृष्ण कथा औषधि का कार्य करती है। और कोई वैसे ही जाना चाहते हैं कृष्ण कथा सुनने के लिए, आनंद लेने के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए भी जाना चाहते हैं, तो वो भी ठीक है, उनके लिए भी कृष्ण कथा है। कृष्ण कथा में सब कुछ है, कृष्ण कथा में कृष्ण का उपदेश भी है, कृष्ण कथा में कृष्ण की अद्भुत लीलाएं भी हैं। आप नृत्य देखना चाहते हैं तो नृत्य भी देख सकते हैं आप। कालिया दमन की लीला देखिए, भगवान कृष्ण कालिया के ऊपर नृत्य कर रहे हैं, कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। 16,100 पटरानियां उनकी, एक आदर्श गृह जीवन कैसे होना चाहिए दिखा रहे हैं। महाराष्ट्र में करोड़ों करोड़ों गोपियों के साथ नृत्य कर रहे हैं कृष्ण अपना विस्तार करके, तो नृत्य आप देख सकते हैं। मतलब कृष्ण कथा में सब कुछ है। आज के जितने भी चलचित्र हैं, हिंदी में हो या अंग्रेजी में हो या बंगाली में हो या किसी भी भाषा में हो, सब जो है वो कृष्ण कथा के से ही नकल मारी गई। आप शायद जानते नहीं, या जानते हैं तो अच्छी बात, कृष्ण कथा से ही नकल मारी है। कृष्ण कथा का विकृत रूप है आज का चलचित्र, स्पष्ट शब्दों में। जो भी आप मूवी देखते हैं बाहर, आप देखते हैं या नहीं देखते पता नहीं, या छुपके देखते हैं, जो भी है, वो विकृत रूप है कृष्ण कथा का। कृष्ण कथा में सब कुछ है। अगर आपको देखना है कि असुरों का वध कैसे किया जाता है, जैसे आजकल के दिखाते हैं हीरो को विलन का वध कर रहा है, तो कृष्ण कथा में तो बहुत सारे असुरों को मारा है श्री कृष्ण ने। बताया जाता है, प्रभुपाद कहते हैं लंच टाइम से पहले कृष्ण जो है रोज 2 असुरों को मारते थे वृंदावन में। 11 साल की अवधि में 8,000 असुर मारे मथुरा जाने से पहले। और तो और फिर सर्कस भी दिखा सकते हैं, सर्कस भी देखना चाहते हैं सर्कस भी देख सकते हैं। इसी कालिया दमन लीला के बाद जंगल में आग लग गई थी और कृष्ण जो है वो सब आग को निकल गए। सर्कस में देखा होगा कभी कभी आपने, आग निकल जाते हैं नहीं, तो कृष्ण तो वास्तविक जो आग था असली में आग को निकल गए। आग की लपटें उठ रही थी, दीवारें बन गई थी आग की, आकाश तक जा रही थी आग की लपटें, और सारी आग निकल गए कृष्ण। तो ये सर्कस है। और अगर आपको युद्ध देखना है तो महाभारत से बड़ा तो युद्ध कोई हुआ ही नहीं। 64 करोड़ जिसमें सैनिक मारे गए, उसमें स्वयं भगवान कृष्ण मौजूद थे। युद्ध देखना है, युद्ध भी देख सकते हैं आप, एडवेंचर भी है, वॉर भी है ना, हर प्रकार का आनंद है, सर्कस भी है। और क्या चाहते हैं बताइए आप, सब कुछ है इसमें। और तो और आप देखना चाहें, स्पोर्ट्स देखना चाहें, हैवी वेट, वेट उठाते हैं, हैवी वेट चैंपियनशिप, तो वर्ल्ड चैंपियन हमारे भगवान कृष्ण है, वर्ल्ड चैंपियन है, उनसे बड़ा कोई चैंपियन हुआ ही नहीं ना होगा। भगवान कृष्ण ही कह सकते हैं आई एम द ग्रेटेस्ट। जिसने कहा था आई एम द ग्रेटेस्ट, वो ग्रेटेस्ट रहा ही नहीं, वो तो कब भी नहीं उठा पा रहा था कृष्ण। लेकिन भगवान कृष्ण ने गिरिराज जी को उठा लिया छोटी उंगली से, 7 साल की उम्र में कमाल दिखाए। और बताइए क्या चाहिए आपको। ये सब जो है कृष्ण कथा में है। ये सब भागवत में आपको मिलेगा। तो ये सब छोड़कर हम कहां जा रहे हैं? यहां तो एक हीरो एक हीरोइन के साथ दिखाया जाता है, नहीं, या दो या तीन, लेकिन भगवान कृष्ण रास लीला कर रहे थे, महारास बताया। एक महारास लीला में ऐसा हुआ, उसमें 100 करोड़ गोपियां थी, बस एक यूथ में, एक यूथ मतलब एक ग्रुप में, ऐसे 100 ग्रुप्स हैं, ऐसे 100 ग्रुप्स है, एक में कितने थे? 100 करोड़ गोपियां, और ऐसे 100 ग्रुप्स है, कितनी गोपियां हो गई? 10,000 करोड़ गोपियां। यह है महाराज भगवान कृष्ण की अद्भुत लीला, जिसकी नकल आजकल के युवा लोग करना चाहते हैं, या फिर मूवीज में दिखाया जाता है, विकृत रूप में दिखाया जाता है, कर भी नहीं पाते हैं लेकिन इसकी चर्चा कर लेते हैं। यह भगवान कृष्ण की रास लीला। अरे नकल नहीं करनी है तो ठीक से करो, गिरिराज जी को उठाओ, जहर पी लो, हालाहल का एक बूंद पी लो, पर्याप्त होगा आपके लिए। वो भी भगवान कृष्ण शिव जी को बोला आप पी लो, है ना, मैं क्या क्या करूंगा, अब आपको मौका देता हूं मैं, आप पी लो उसको। क्योंकि भगवान कृष्ण ऑलरेडी बहुत सारी लीला कर रहे थे, वो मंदराचल पर्वत उन्होंने उठाया हुआ था कश्यप रूप में, कश्यप अवतार के रूप में, और भगवान अजीत बैठे हुए थे एक और अवतार मंदराचल पर्वत के ऊपर, तो ये सब मोहिनी अवतार लिया था, एक ही समय में 3 अवतार लिए हुए थे भगवान ने। लेकिन जब हालाल जहर निकला तो उन्होंने कहा शिव जी को कहा कि आप पी लीजिए इसको, उसकी एक बूंद पी ले, हम लोग बूंद भी नहीं पी सकते हम, हालाहल जहर। तो भगवान कृष्ण की कोई भी लीला का हम नकल कर ही नहीं सकते हैं, करना भी चाहे तो। पूतना का वध किया 6 दिन में, उसके बाद वध किया तृणाव्रत का, उसके बाद वध किया शक्टासुर का, उसके बाद फिर उन्होंने वध किया। उस समय तो गोकुल में थे, तो दामोदर लीला की उन्होंने, अर्जुन वृक्ष का उद्धार किया। 3-3.5 साल तक तो गोकुल में रहे भगवान कृष्ण। उसके बाद नंद महाराज ने ब्रजवासियों के साथ मिलकर फैसला किया, अब हमारे लिए गोकुल रहने लायक नहीं है, क्योंकि यहां पर कंस जो है असुर भेने लगा है, हमारे बालक जो है सुरक्षित नहीं है, हमें यहां से निकलना होगा। तो दामोदर लीला के उपरांत नंद महाराज ब्रजवासियों को लेकर गोकुलवासियों को लेकर वहां से निकल पड़े। और बताया जाता है कि नंद गांव में प्रवेश करने से पहले छठीगरा में 1.5 साल रुके। छठीगरा जानते हैं आप? छठीगरा जहां से हम लोग लेफ्ट टर्न लेते हैं वृंदावन धाम की ओर, है कि नहीं? छठीगरा वो स्थान है जहां पर नंद महाराज को कर चुकाने आते थे वहां के जो ग्वाले थे। तो नंद महाराज वहां पे रुके थे 1.5 साल, और उसके बाद नंद गांव में प्रवेश किए जब भगवान कृष्ण 5 साल की उम्र के थे। 5 साल की उम्र के थे। तो इस प्रकार भगवान कृष्ण ने अनेकों लीलाएं की, बाल लीला की, और उसके बाद फिर पौगंड लीला, किशोर लीला, यौवन लीला, और उसके बाद फिर जब नंदगांव आ गए तो फिर वहां पे गोचारण लीला प्रारंभ की। अभी तक तो वो बछड़े चराते थे, अब माता यशोदा ने उनको गाय दी चराने के लिए, साथ में पादुका भी दी, छतरी भी दी। भगवान कृष्ण ने मना कर दिया, उन्होंने कहा हमारी गैया तो चप्पल नहीं पहनती हैं, उनके लिए तो कोई छतरी है नहीं, मैं छतरी लेकर जाऊं ये शोभा नहीं देता, मैं भी नंगे पांव चलूंगा। भगवान कृष्ण ब्रज में नंगे पांव चले, जहां पर कंकड़ पत्थर होते हैं, लेकिन भगवान कृष्ण जहां भी जाते थे वो रास्ता बिल्कुल मुलायम हो जाता था उनके लिए, कारपेट की तरह बिछ रास्ता था बिल्कुल। तो इस प्रकार भगवान कृष्ण ने गोचारण लीला प्रारंभ की जिस दिन उन्होंने गोचार लीला प्रारंभ की वो दिन गोपाष्टमी का पड़ता है, और उस दिन पहली बार श्रीमती राधारानी भगवान कृष्ण को देखने के लिए घर से निकले थे। बड़ी तेजी से भाग रही थी वो, उन्होंने अपना लहंगा ऊपर किया थोड़ा सा, पहली बार श्रीमती राधारानी के चरण दर्शन हो गए। गोचारण लीला। उसके बाद फिर बड़े बड़े असुर वहां पे भी भेजे गए कंस के द्वारा, अगासुर का वध किया, बकासुर का वध किया, बकासुर की तो चोंच फाड़ के फेंक दी। बकासुर के बकासुर को जब पकड़ने लगे तो बकासुर ने क्या किया, कृष्ण को निकल लिया अंदर। पूतना के भाई थे अगासुर और बकासुर, बड़े अजीब से नाम है इनके। तो बकासुर ने चोंच को खोला तो भगवान कृष्ण ने जब पकड़ा हुआ था उनको अंदर निकल लिया। थोड़ी देर के लिए कृष्ण अंदर चले गए थे, लेकिन जब अंदर लिया तो ऐसा लग रहा था जैसे कोई गर्म लोहा डाल दियो अंदर, इतना कड़वा लग रहा था, इतना गर्म लग रहा था। तप रहे थे कृष्ण, बकासुर जो है वो घबरा के उसने कृष्ण को बाहर फेंक दिया। उसके बाद भगवान कृष्ण ने चोंच पकड़ी, जोर से फाड़ दिया, दो भागों में बांट दिया बकासुर को। वसासुर भी था, और फिर उसके बाद फिर अगासुर, अगासुर को देखा तो सखाओं को लगा कि कोई लंबी सड़क है, गुफा जैसे लग रही है, इसके अंदर हम जाएंगे सब खेलने के लिए। सखा लोग अंदर चले गए, और जब अंदर गए तो भगवान कृष्ण समझ गए कि ये तो असुर है, इतना लंबा है, इतना चौड़ा है, बादल तक उसके जो है उसका मुंह जा रहा है, मुंह से फाड़ के लेटा हुआ था, बहुत लंबा। भगवान कृष्ण भी उसके भीतर चले गए, अंदर गए, अंधेरा था बिल्कुल, भगवान कृष्ण बिल्कुल लंबे हो गए, कृष्ण बिल्कुल लंबे हो गए, अगासुर को फाड़ के निकल गए बाहर। लगभग 8,000 असुरों का वध किया हमने बताया, लेकिन असुरों के वध के लिए भगवान कृष्ण ने कोई अस्त्र शस्त्र नहीं उठाया। ये है भगवताओं की। पूतना का वध जो छठे दिन किया था, आप जानते हैं पूतना कितनी लंबी थी, यहां से पंजाई बाग तक, उसकी लंबाई यहां से पंजाई बाग थी 18 मील, 18 माइल्स, यहां से पंजाई बाग तक उसकी लंबाई थी। छठे दिन मार दिए, बताइए। तो भगवान जब प्रकट होते हैं, जब प्रकट होते हैं, जैसे कंस के कारागार में प्रकट हुए, उसके बाद वसुदेव जी उनको गोकुल ले गए, प्रकट होते ही उन्होंने दिखा दिया कि वो भगवान है, स्वयं परम भगवान श्री कृष्ण। वैवस्वत मनवंतर में प्रकट होते हैं, 28वें द्वापर युग में, भाद्रमास अष्टमी के दिन रोहिणी नक्षत्र में भगवान कृष्ण प्रकट होते हैं इस भूमि में, पृथ्वी में, ब्रज भूमि में, कंस के कारागार में और गोकुल में भी। मथुरा से गोकुल गए वसुदेव जी लेकर, उनको बाल लीलाएं गोकुल में की उन्होंने, वहां से प्रारंभ किया उन्होंने। उसके बाद मथुरा, जब वृंदावन में 11 साल हो गए तो 11 साल के बाद अब कृष्ण बलराम मथुरा की ओर चल पड़े थे। 11 साल के बाद ब्रजवासियों को बड़ा वियोग हुआ, सहा नहीं गया उनसे, फिर बहुत बुरी हालत हो गई सबकी। इंतजार करते रहे, करते रहे, करते रहे, कब वापस आएंगे पता नहीं। मथुरा चले गए, मथुरा जाकर भी उन्होंने कई असुरों का वध किया, धोबी का उद्धार किया, कुब्जा का उद्धार किया भगवान कृष्ण ने, कुवलिया पीड़ हाथी का उद्धार किया, है कि नहीं? ये कृष्ण कथा है। कुवलिया पीड़ के साथ जो युद्ध हुआ वो किसी सर्कस के शो से कम है क्या? हाथी को उठा के फेंक दिया, इतने बड़े हाथी को, चाणूर और मुष्टिक के साथ युद्ध किया, मल युद्ध का आयोजन किया गया था, उद्देश्य था कि कृष्ण बलराम को मारना। और ये दृश्य देखने के लिए मथुरावासी और सभी ब्रजवासी वहां पर एकत्रित थे, सभी आए थे, माता यशोदा, नंद महाराज सभी आए हुए थे, सारे ब्रजवासी आए थे। बताया जाता है इस दृश्य को भक्त लोग देख रहे थे अपने अपने दृष्टिकोण से, अपने अपने भाव के अनुसार। माता यशोदा नंद महाराज के हृदय में वात्सल्य प्रेम जागृत हुआ, जो सखा था उनके अंदर सख्य रस सख्य भाव जागृत हुआ, लेकिन जो असुर थे राक्षस थे वो भयभीत थे, वो काल के रूप में देख रहे थे कृष्ण को। और फिर कंस के लिए भी वो काल बन गए। कंस तो कृष्ण को देखकर भयभीत था पहले से ही, बहुत पहले से भयभीत। पिछले 10 दिन में जितने भी ब्रज में बच्चे हुए हैं उन सब को मार डालो, नारद जी ने आगे बताया था। आपको आकाशवाणी के द्वारा पता चला है कि 8वीं संतान जो है आपकी मृत्यु का कारण बनेगा, लेकिन 8वीं संतान कौन सी है ये कैसे पता चलेगा आपको? हो सकता है कि पहली संतान ही 8वीं संतान हो, नारद जी ने सुझाव दिया। नारद जी ने ऐसा सुझाव क्यों दिया? क्योंकि वो भगवान कृष्ण की लीलाओं को देखना चाहते थे, उनके अंदर लालसा थी कब भगवान कृष्ण प्रकट होंगे, इसे जल्द ही इसको आगे बढ़ाया जाए कार्यक्रम को, तो नारद जी ने इसलिए किया। नारद जी भगवान के शुद्ध भक्त हैं। तो इस प्रकार कंस ने इसलिए आदेश दिया था, पिछले 10 दिन में कोई भी संतान हुई हो ब्रज में सबको मार डालो। क्या क्या अत्याचार किया कंस ने बताइए, स्वयं परम भगवान श्री कृष्ण को आना पड़ा। तो ये जो ब्रज के असुर हैं ये हमारे अनर्थ हैं, और जब तक ये अनर्थ रहेंगे हम ब्रज में प्रवेश नहीं कर सकते। एक एक असुर एक एक अनर्थ का सूचक है, इसलिए इन अनर्थों को इन असुरों को मारना होगा। मारेंगे कैसे? वहां तो स्वयं कृष्ण ने मारा, हमारे पास मारने का क्या अस्त्र है? ये ग्रंथ है कि नहीं? कृष्ण स्वधाम उपगते ज्ञान धर्मादिवी सह कलो नष्ट दृशामेश पुराणार्को दिनोदिता। श्रीमद भागवत की जाए, श्रीमद भागवत के बारे में लिखा है कि कलयुग में क्या है, जब भगवान कृष्ण कलयुग के प्रारंभ में भगवान कृष्ण चले गए धाम लीला करके, ज्ञान और धर्म के साथ भगवान कृष्ण चले गए, तो कलयुग का उद्धार करने के लिए ये श्रीमद् भागवत प्रकट हुआ है। श्रीमद् भागवत ये साक्षात कृष्ण है ग्रंथ के रूप में, इसलिए इसको पढ़ना, इसका वितरण करना, इसमें जो कथा है उसकी चर्चा करना, इससे जितने भी असुर हैं हमारे भीतर उनका वध होगा। इसको जितना अधिक हम पढ़ेंगे उतने असुर हमारे भीतर जो है वो मरेंगे। कृष्ण कथा के माध्यम से असुर और राक्षस मारे जाते हैं, इसलिए आप सबको कृष्ण कथा का लाभ उठाना चाहिए। लाभ उठाएंगे आप तो अभी आपको हम कुछ दिखाएंगे स्क्रीन में, तो आप देखिएगा। ठीक है, स्क्रीन खोल लीजिए आप। नहीं तो पीछे तो जी के द्वारा कि हम सब कृष्ण भावना भावित हों, कृष्ण के बारे में सुने, कृष्ण के बारे में कहें, कृष्ण का चिंतन करें, और ऐसा करने से जीवन के अंत काल में कृष्ण का स्मरण होगा, ये हमारा जीवन सफल हो जाएगा। इसके लिए अभी से तैयारी करनी होगी हम सबको, नित्यम भागवत सेवया। तो कहने का अर्थ ये है कि इस आंदोलन में हम जुड़ तो गए, लेकिन क्या हम कृष्ण के बारे में कुछ जानते भी हैं कि नहीं, उनकी कौन कौन सी लीलाएं हैं, उनके गुण क्या हैं। भक्ति रसामृत सिंधु में 64 दिव्य गुणों का वर्णन किया गया है रूप गोस्वामी के द्वारा, जो कि आपको उपलब्ध है पुस्तक के रूप में, नेक्टर ऑफ डिवोशन। 64 दिव्य गुणों का वर्णन किया गया है, और उसके अलावा भगवान कृष्ण की इतनी सारी लीलाएं हैं। भगवान के साथ जितना संबंध आप स्थापित कर सकते हैं और किसी के साथ नहीं कर सकते हैं, किसी अन्य अवतार के साथ इतने संबंध नहीं स्थापित कर सकते आप जितना कि आप कृष्ण के साथ स्थापित कर सकते हैं। रसों के भंडार हैं श्री कृष्ण, सभी अवतारों के स्रोत हैं, अवतारी नहीं है भगवान कृष्ण, भगवान विष्णु के भी कारण भगवान कृष्ण है। क्योंकि आज के समाज में अधिकांश लोग यही सोचते हैं, भ्रांति यही है देश में, सोचते हैं कि भगवान कृष्ण विष्णु के अवतार हैं। नहीं, भगवान विष्णु जो है वो कृष्ण के विस्तार है, भगवान कृष्ण आदि पुरुष है, सब कुछ उनसे निकला है। भगवद गीता में स्वयं भगवान बोल रहे हैं, अहम सर्वस्य प्रभो मत्ता सर्वम प्रवर्तते, मैं ही आध्यात्मिक और भौतिक जगत का कारण हूं, सभी अवतारों के उद्गम भगवान कृष्ण है। तो कहने का अर्थ यह है कि इस आंदोलन में जुड़ने का मतलब है भगवान कृष्ण की शिक्षाओं को अपनाना और उनके बारे में जानना, जो कि इन ग्रंथों में उपलब्ध है। इसलिए प्रभुपाद ने 1970 में एक पुस्तक लिखी, उस पुस्तक का नाम है कृष्णा दी सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड, पुरुषोत्तम परम भगवान श्री कृष्ण, हिंदी में। किसी ने पूछा कि प्रभुपाद हमें तो सीधे दशम स्कंद में नहीं जाना चाहिए, ये तो कृष्णा पुस्तक जो है वो दशम स्कंद का सार लगता है। प्रभुपाद ने कहा कि अगर बच्चा कड़वी दवाई नहीं खाता है तो साथ में मिश्री मिला के देना पड़ता है। हम बहुत सारी सेवाएं तो कर रहे हैं, लेकिन साथ में अगर मिश्री ना हो, यानी कि मिठास ना हो और रस ना हो कृष्ण कथा का, तो ऐसी सेवाएं भी धीरे धीरे फीकी पड़ जाती हैं। इसलिए इस कथामृत का पान करना हम सबके लिए आवश्यक है, एक खुराक है, ये टॉनिक है, एक रसायन है, रसायन का पान हम सबको करना है। आइए आपको दिखाते हैं, ये प्रभुपाद जी के कुछ कोट्स हैं, प्रभुपाद ने जो इस कृष्णा पुस्तक के लिए बोले हैं। ये पुस्तक इतनी जरूरी है हम सबके लिए, ये प्रभुपाद के मुख से सुने। People who are reading Krishna book very seriously and tries to understand Krishna, he will understand. Krishna is very kind. As soon as he begins reading Krishna book with a little faith and adherence, Krishna will be very much pleased. कोई थोड़ा सा भी प्रयास करता है गंभीरता पूर्वक इस पुस्तक को पढ़ने के लिए, निश्चित रूप से कृष्ण हमसे प्रसन्न होंगे, ऐसा प्रभुपाद कह रहे हैं। अगला, नेक्स्ट। Krishna book is written in such a way that everyone can read. But a scheme is like that. To understand Krishna, one has to go through this. Idea that Krishna book should be read, just like the example can be given sandalwood. It is rubbed in the flat way. But if you rub in the horizontal way, how? No. What's called? Standing. So we should also enforce that rule. Yes, suniye bade dhyan se. Anyone is not attending Mangal Aarti should be fined. प्रभुपाद कहते हैं, हंस रहे हैं, जो भी मंगल आरती में नहीं आता उसको फाइन लगना चाहिए। आप घर पे हैं तो घर पे मंगल आरती शुरू करिए, नहीं तो आप सबके लिए भी फाइन है। आप में से कितने लोग मंगल आरती में नहीं आते हैं या नहीं उठते हैं घर पे मंगल आरती के साथ? मंगल आरती होती है सुबह 4:30 बजे। सच सच बताइए, झूठ मत बोलिए, हाथ खड़ा करिए। ये तो बड़ी खुशी की बात है, आप सबके ऊपर ये फाइन लग गया। एंड द फाइन शुड बी दैट ही मस्ट सेल वन कृष्णा बुक, इज दैट ऑल राइट? तो जो मंगल आरती में नहीं आते हैं या मंगल आरती घर पे नहीं करते हैं, उन सबको एक कृष्णा पुस्तक का वितरण करना होगा। करेंगे आप सब? करेंगे? मैं बोल नहीं रहा। नाउ दैट व्हेन यू रीड कृष्णा द बुक विच इज फुल ऑफ कृष्णा एक्टिविटी, दैट इज ऑल्सो संकीर्तन, दैट इज ऑल्सो संकीर्तन। संकीर्तन डज नॉट मीन सिंपली चैंटिंग द होली नेम ऑफ कृष्णा, संकीर्तन मीन्स यू डिस्कस कृष्णा एक्टिविटी, दैट इज ऑल्सो संकीर्तन। कृष्ण की लीलाओं का गुणगान करना, उसकी चर्चा करना, यह भी संकीर्तन है। तो कृष्ण पुस्तक में तो कृष्ण की लीलाएं हैं, कृष्ण का नाम है। यू आर गोइंग टू डिस्ट्रीब्यूट बुक्स, बट व्हाट इज द आइडिया? इट इज कृष्णा'स बुक्स, इट मस्ट बी डिस्ट्रीब्यूटेड। जब आप ग्रंथ बांटते तो किसकी पुस्तकें बांट रहे हैं? ये कृष्ण की पुस्तकें हैं। सो कृष्णा इज रिमेंबर्ड देयर एट द सेम टाइम बिकॉज इट इज कृष्णा'स बुक। इफ समबडी परचेसेस, if he pays something, he will look at it, something, what this nonsense has written, let me see. Koi kitab dekhega, Krishna pustak dekhega, to nishchit roop se uske hirde mein ichcha jagrit hogi, kya hai kitab, kya bakwas likha, zara dekhe to sahi. Then he will get some idea, and if he reads one line, he comes 100 times forward to Krishna consciousness. Agar ek line bhi koi pad lega is pustak mein, to sekdo guna wo कृष्ण भावना की ओर नजदीक आएगा, सैकड़ों गुना, 100 times। दैट इज द आइडिया, दिस इज प्रीचिंग। इफ यू सिंपली रीड अवर बुक कृष्णा इन 2 parts, आई एम श्योर यू विल बिकम कृष्णा कॉन्शियस अनडाउटेडली। अगर आप कृष्णा पुस्तक पढ़ेंगे, प्रभुपाद कह रहे हैं कि आप निश्चित रूप से कृष्ण भावना भावित हो जाएंगे। कृष्णा बुक वॉज नेवर इन, आई कुड नेवर सी इट इन बिकॉज इट वॉज ऑलवेज आउट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे इट वॉज इन। In fact, when it was going into the library, the head of the department, he took it right away. So Prabhupada bol rahe hain, jis din se kitab chhapi hai, kabhi Krishna book saath mein rahi nahi. Usi din se bahar nikal gayi hai. Aur jab library mein hum log dikhaye isko, to turant unhone ye le liya. We are therefore going to Krishna to taste laddu with him. Ye laddu hai, galat likha hai. Laddu kachori from that Krishna book. यानी कि कृष्ण पुस्तक जब हम पढ़ते हैं तो उसमें फिर हम कृष्ण के और नजदीक जाते हैं, कृष्ण के साथ लड्डू खाने के लिए, कचौड़ी खाने के लिए। पीपल हैज टू गिव लिटल अटेंशन, अवर मूवमेंट इज साइंटिफिक, देन दे विल अंडरस्टैंड। देयरफॉर वी आर पब्लिशिंग सो मेनी बुक्स ओनली अबाउट कृष्ण। एवरी पेज यू विल फाइंड कृष्णा कृष्णा कृष्णा, आइदर इन कृष्णा बुक और श्री चैतन्य चरितामृत और द भागवत और द नेक्टर ऑफ डिवोशन और टीचिंग द लॉर्ड चैतन्य, द वर्ड इज कृष्णा। That is simply explained in a different way. Actually, these 2 books, Krishna book and Bhagavad Gita, as it is a revolutionary to your country, not only your country, but all over the world, anyone who will read this Krishna book in 2 parts and Bhagavad Gita, I'm sure he cannot go away from becoming a devotee of Krishna. So try to push our books, especially Bhagavad Gita as it is in Krishna, backed by regular supply of our magazines and regular performance Sankirtan. Then I'm sure Krishna consciousness movement will go forward without any hindrance. One Krishna book sold means we go forward one step in our Krishna consciousness. We should always remember this. एक भी कृष्ण पुस्तक आप बांटते हैं तो एक कदम आप कृष्ण की ओर चल पड़ते हैं, यह हमेशा हम याद रखते हैं। Just now I was reading Krishna book. It is very interesting and entertaining and written so even a child can follow. In our childhood days we were reading one book, Folk Tales of Bengal. Prabhupada बता रहे हैं कि बचपन में स्कूल में उन्होंने किताब पढ़ी थी, फोक टेल्स ऑफ बंगाल। इट वॉज वेरी आइडली रेड एस्पेशली बाय चिल्ड्रन। सो वाई नॉट इंट्रोड्यूस द कृष्णा बुक फॉर सेम पर्पज? यू मे गेट सम सैंक्शन फ्रॉम द मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन। इट इज अ वेरी नाइस बुक फॉर स्टूडेंट स्टडी। दे विल गेट अवर कल्चरल आइडिया एंड लर्न टू रीड इंग्लिश। तो प्रभुपाद बोल रहे हैं कि कृष्णा बुक हमें स्कूल में भी इंट्रोड्यूस करना चाहिए। It is very good that professor has recommended a Krishna book for undergraduate study. This book should be introduced as a Krishna study book. As soon as the book is discussed in the class, the books will be purchased by the students. तो ये books की संख्या है कि कितने मात्रा में books published होती थी उन दिनों। Anybody seriously reading our book, he will be liberated. There is no doubt. त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नेति मामेति। That's a fact. If not all books, simply Krishna book, if one reads carefully daily, he is liberated undoubtedly. अगर और कोई पुस्तक आप नहीं पढ़ सकते, अगर आप ये पुस्तक पढ़ लेते हैं रोज के बेसिस पर, अगर रोज पढ़ते हैं और ये पुस्तक पढ़ते हैं, तो निश्चित रूप से आप इस संसार से मुक्त हो जाएंगे. Devotees were shouting here, it is right from the lotus mouth of Srila Vyasadeva. We have been waiting 5000 years for this. And now here it is, Krishna book, especially made for Kali Yuga. And people were saying, oh Krishna book, give me one and let me have one to give as a gift. Everywhere there was a sea of hands reaching out for books. It was like feeding starving masses. It was incredible, simply incredible. Matlab bhakt log chilla rahe the. ये व्यासदेव के मुखारबिंद से निकला हुआ है. पिछले 5000 साल से हम इसका इंतजार कर रहे थे. ये लीजिए, ये देखिए, ये कृष्णा पुस्तक है, विशेष रूप से इस कलयुग के लिए है. और लोगों ने कहा, ओ ये कृष्णा पुस्तक है, मुझे एक दीजिए और मैं एक और लूंगा, ताकि मैं इसको आगे उपहार के रूप में दे सकूं. फिर हमने देखा कितने सारे लोग आ गए, उन्होंने सब ने पुस्तक ली. ऐसा लग रहा था कि हम भूखे लोगों को खाना खिला रहे हैं. सिंपली इनक्रेडिबल. तमाम कृष्ण महाराज देन गेव हिम द फाइनल बुक डिस्ट्रीब्यूशन फिगर्स फॉर द 6-day क्रिसमस पीरियड. द फिगर्स वेर एस्टॉन्डिंग एंड प्रभुपाद लाफ्ड इन अ क्लियर एंजॉयमेंट ओवर 6 lakh बुक डिस्ट्रीब्यूटेड इन न्यूयॉर्क अलोन. दे हैड सोल्ड 18,000 कृष्ण बुक ट्रिलॉजीज इन जस्ट वन डे. ये ट्रांसलेट डायरी में है. उन दिनों जब प्रभुपाद जी के समय में क्रिसमस मैराथन हुआ करता था. अभी तो पूरे महीने हम लोग मैराथन करते हैं. दिसंबर के महीने में प्रभुपाद ने जब शुरू किया था, उस समय एक हफ्ते का क्रिसमस मैराथन होता था. और समय का स्कोर बता रहे हैं कि 6 दिन में 6 lakh पुस्तकों का वितरण हुआ और एक दिन में 18,000 कृष्णा बुक्स डिस्ट्रीब्यूट है. 18,000 कृष्णा बुक्स इन वन डे. आप सुन रहे हैं, सपना नहीं है, ये सच है. आप सोच रहे की कल्पना है. नहीं, कल्पना नहीं है, आप जो दिखाई दे रहा है बिल्कुल सच है. प्रभुपाद जी के टाइम में अमेरिका में 18,000 कृष्णा बुक्स डिस्ट्रीब्यूट इन वन डे. और उनके पास जो भक्त थे, सिर्फ मंदिर से ही थे, कॉन्ग्रीगेशन तो कोई था नहीं उनके पास, बाहर से कोई जुड़े नहीं थे लोग. और क्योंकि क्रिसमस के दिन, क्रिसमस के समय लोग शॉपिंग में बहुत जाते हैं अमेरिका में, और मॉल जो है रात को खुले रहते हैं पूरी रात, और लोग शॉपिंग के लिए जाते हैं, तो इतनी भीड़ होती है रास्ते में दुकानों में, और वहां कहीं ना कहीं ग्राहक मिल ही जाते हैं पुस्तक के लिए. तो 18,000 कृष्णा बुक एक दिन में बांटे गए. कैन यू बिलीव? क्या आज ये हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता है? और इस देश में तो संख्या की कोई कमी नहीं है. जितना भी आप पुस्तक बांटते रहे उतना ही कम है. तो ये कुछ कोट से, कोटेशन से प्रभुपाद जी के कृष्णा बुक के ऊपर. तो प्रभुपाद ने कृष्णा बुक लिखी थी, उस समय जॉर्ज हैरिसन बीटल्स ग्रुप के थे, उन्होंने सहायता की थी. उन्होंने $19,000 डोनेट किए थे इस पुस्तक के प्रकाशन के लिए. और प्रभुपाद ने विशेष आशीर्वाद दिया जॉर्ज हैरिसन को. वर्ल्ड फेमस सिंगर थे वो. उन्होंने उस समय राधा कृष्ण एल्बम ही निकाला था जॉर्ज हैरिसन, जिनको सुनकर फोर्ड मोटर्स के जो थे अल्फर्ड फोर्ड, उस राधा कृष्ण एल्बम को सुनकर वो इस कौन में आए थे. उस राधा कृष्ण एल्बम में आप जानते हैं कौन से सॉन्ग रिकॉर्ड हुए थे? गोविंद आदि पुरुषम ताम बजाम, जो रोज आप सुनते हैं दर्शन आरती के समय, वो उस एल्बम में था. और बहुत सारे अलग अलग गाने थे. तो अल्फर्ड फोर्ड उसको सुनकर आए थे. जॉर्ज हैरिसन ने कृष्णा बुक के लिए जनरस कॉन्ट्रीब्यूशन किया और कृष्णा बुक उस समय 3 parts में डिस्ट्रीब्यूट छपे थे. और जिस दिन कृष्णा बुक आई, उसी दिन क्या हुआ कि कुछ भक्त लोग कृष्णा पुस्तक उस लेके गए और गैस स्टेशन में गए, तो उनके पास पैसे नहीं थे देने के लिए. और वहां उन्होंने पहली बार हिस्ट्री में, इस्कॉन की पहली बार इस्कॉन में बुक डिस्ट्रीब्यूशन शुरू हुआ एक पेट्रोल पंप से. वहां उन्होंने कृष्णा पुस्तक दिया गाड़ी में जो लोग आते थे गैस भराने के लिए. फिर उन्होंने प्रभुपाद को जाके बताया कि प्रभुपाद हम गए वहां, हमने कृष्णा पुस्तक दी पेट्रोल पंप में, गैस स्टेशन में, क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं थे, तो फिर हमने ये बांटना शुरू किया। प्रभुपाद ने कहा आज ही क्या सिर्फ हम इसको रोज कर सकते हैं। इस तरह से हमारे इस्कॉन में ये बुक डिस्ट्रीब्यूशन शुरू हुआ, अर्ली 70s की बात है। आज आप देखिए इन ग्रंथों का अनुवाद विश्व के सभी भाषाओं में हो चुका है। प्रभुपाद जी ग्रंथ जो है विश्व के सभी भाषाओं में इसका अनुवाद हो गया है। अभी हाल ही में एक भाषा है, उसको कहते हैं पेंगुइन लैंग्वेज, पेंगुइन भाषा, और ऐसे लोग जो भाषा बोलते हैं सिर्फ 40,000 लोग ही हैं पूरे पृथ्वी में, और उनकी भाषा में भगवद गीता छप चुकी है एज इट इज। प्रभुपाद जी 70 अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं में भगवद गीता का अनुवाद हो गया है, 70 इंटरनेशनल लैंग्वेजेस में, और ये कृष्णा पुस्तक भी कई भाषाओं में छप चुकी है। देश विदेशों में लोग भगवान कृष्ण की लीलाओं को पढ़ रहे हैं, भगवान कृष्ण के बारे में सुन रहे हैं। जन्माष्टमी उत्सव बनाने का सर्वोत्तम तरीका है इस ग्रंथ को पढ़ा जाए, उस ग्रंथ का वितरण किया जाए। आप इस ग्रंथ का वितरण करके देखिए, आप देखेंगे जन्माष्टमी आपके लिए सबसे ज्यादा जो है वो आनंद प्रदान करने वाला होगी। इस साल जन्माष्टमी जो है आप सबसे ज्यादा आपको आनंद मिलेगा जन्माष्टमी में, अगर आप इस ग्रंथ का वितरण करेंगे। क्योंकि क्यों क्यों आनंद मिलेगा आपको? क्योंकि पूरे महीने आप भगवान कृष्ण के बारे में बोलेंगे दिन रात। हमारे भक्त जो भगवद गीता का वितरण करते हैं दिसंबर के महीने में, कई ऐसे भक्त हैं जो रात को सपने में भी भगवद गीता का वितरण कर रहे होते हैं। हाँ, रात को भी वो बोलने लग जाते हैं भगवद गीता सपने में। कई भक्त हैं ऐसे, हमारे एक भक्त है मधुसुंदर, वो रात को भी बोलने लग जाते हैं, बुक डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में चर्चा करते हैं, भगवद गीता का वितरण कर रहे होते हैं सपने में भी। तो इसी तरह से इस ग्रंथ का जब वितरण करेंगे, इसमें मग्न हो जाएंगे, एब्जॉर्ब हो जाएंगे, तो आप देखेंगे रात को आपको किसका चिंतन होगा? कृष्ण का चिंतन होगा। अब बार बार कृष्ण का नाम लेंगे, बार बार जब कृष्ण का नाम लेंगे रात को भी सपने में भी, तो फिर क्या होगा? आप कृष्ण भावना भावित होंगे। तो इसलिए हमने कहा था कि आज जन्माष्टमी का पहला दिन है, आज से जन्माष्टमी का उत्सव शुरू हो गया, और विशेष रूप से हमने एक महीने का इस बार एक मैराथन रखा है। इसका नाम ही है कृष्णा बुक मैराथन, जैसे भगवद गीता के ऊपर मैराथन होता है, ये कृष्णा बुक मैराथन है। 15 जुलाई से हम लोग शुरू कर रहे हैं, चातुर्मास का पहला दिन। वैसे तो आज भी पहला दिन है शयन एकादशी। ये जो शयन एकादशी है, हरि भक्ति लास के अनुसार चातुर्मास एकादशी से एकादशी भी रखा जाता है, और पूर्णिमा से पूर्णिमा तक भी। शयन एकादशी से लेकर उत्थान एकादशी तक ये कुछ भक्त लोग चातुर्मास से रखते हैं, और फिर पूर्णिमा से पूर्णिमा तक, व्यास पूर्णिमा जो आ रही है 15 तारीख को, फिर कार्तिक पूर्णिमा तक, 4 महीने चातुर्मास का व्रत रखा जाता है। तो चातुर्मास का प्रथम दिन है, पहला दिन, उस दिन हम लोग ये बुक मैराथन शुरू कर देंगे। आप सबकी सहायता की आवश्यकता है, हम हाथ फैलाने में घबराते नहीं है, ये हमारा स्वधर्म है। हम सब यहां पर याचक की भांति आए हैं, मांगना हमारा स्वधर्म है, अपने लिए नहीं, कृष्ण के लिए, कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए। कृष्ण की प्रसन्नता, कृष्ण प्रसन्न होंगे देखकर जब उनके बारे में हम लोग दिन रात चर्चा करेंगे, उनके बारे में जो लिखा गया ग्रंथ है उसका हम वितरण करेंगे। कितना आसान तरीका है यह, इदम परमम घुयम मत भक्तेषु अभिधास्यति। भगवान कह रहे हैं जो इस परम घुय ज्ञान को मेरे भक्तों को सुनाता है वो सबसे प्रिय भक्त है मेरा। तो आप में से कितने भक्त हैं यहां पर जिनके पास ये पुस्तक नहीं है? सबसे पहले आप हाथ खड़ा करिए। ये बुक किस किस के पास नहीं है, हाथ खड़ा करिए प्लीज। पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण, ये पुस्तक किसके पास नहीं है, प्लीज हाथ खड़ा करिए। धीरे धीरे आप खड़ा कर रहे, हाथ खड़ा करिए, किसके पास नहीं है पुस्तक? तो कुछ लोग घबरा रहे हैं बोलने से, नहीं तो घबराइए मत, ये मौका आपको मिल रहा है सेवा का। सेवा ही हमारा असली धर्म है, सेवा से ही हम भगवान से संबंध स्थापित कर सकते हैं, और उत्तम सेवा है जब हम प्रचार की सेवा लेते हैं। हमारे बीच में आदियोगी प्रभु हैं, आपके सामने एक लघु नाटिका प्रस्तुत करेंगे। आप जानते हैं कि वो साक्षात कृष्ण का रोल करते हैं और आप सबको उत्साहित करेंगे कि आप उनके बारे में बोलना शुरू करते हैं और इससे आप बहुत जल्दी ही कृष्ण भावना भावित होंगे। तो आप सबसे प्रार्थना है कि इस साल ये जो पहली बार हम लोग मैराथन कर रहे हैं इसमें आप सब भाग लीजिए और उस मैराथन को सफल बनाइए। अभी हम लोग फरीदाबाद में थे शनिवार को, वहां के भक्तों ने अभी 5,000 कृष्णा बुक प्लेच किया है। वहां के कंग्रीगेशन ने बड़े उत्साहित हैं, उन्होंने कहा कि आज से ही हम शुरू कर देंगे इसका वितरण। तो बहुत उत्साहित हैं हमारे विचित्र कृष्ण प्रभु बैठे हैं। ईस्ट दिल्ली की तरफ से कम 2,000 कृष्णा बुक का वितरण होने वाला है और यहां की तरफ से भी बाकी है। रेडी है।